नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अनिश्चितता के दौर में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता है। पश्चिमी एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, कुछ देशों ने संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतगणना जारी, बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जीत की ओर अग्रसर। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, अनुज अग्निहोत्री ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दे रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पश्चात वेबिनार कृषि और ग्रामीण परिवर्तन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार एग्रीटेक के माध्यम से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना विकसित कर रही है। उन्होंने किसान पहचान पत्र और डिजिटल भूमि सर्वेक्षण को परिवर्तनकारी कदम बताया। एआई आधारित प्लेटफॉर्मों और डिजिटल सर्वेक्षणों की भूमिका पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है जब इसे संस्थानों और उद्यमियों द्वारा एकीकृत किया जाता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी को पारंपरिक प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के तरीकों पर सुझाव आमंत्रित किए।
एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है।
श्री मोदी ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को सशक्त गति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
लखपति दीदी अभियान की सफलताओं की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गाँव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनिश्चितता के इस युग में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता है। श्री सिंह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित रक्षा समुद्री संवाद सागर संकल्प भारत की समुद्री शान की वापसी का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हुआ है, साथ ही समुद्री गतिविधियों में निरंतर वृद्धि भी हुई है।
मुझे बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस सेक्टर में भारत पूरी गति के साथ सेल्फ रिलायंस की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। साथ ही हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश इस महीने के अंत तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। ओडिशा के कटक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि सुरक्षा बल तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले लाल गलियारे के माओवादियों के सपने को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे।
नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प के 31/3/2026 हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त, और उसमें भी CISF का बहुत बड़ा योगदान है। ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे CISF ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है।
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी बंदरगाहों की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने कहा कि सीआईएसएफ को ड्रोन सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है और इसके लिए एक अलग विभाग का गठन किया जाएगा। एक अन्य कार्यक्रम में गृहमंत्री ने ओडिशा के पारादीप में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के परिसर में एक नए सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का लोकार्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नागालैंड के युवाओं से राष्ट्रीय सेवा में शामिल होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विकसित नागालैंड विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज उन्हें बोतो जिले के लुमामी में नागालैंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विशाल विविधता के बावजूद एकता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उपराष्ट्रपति ने सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए शांति और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
This year Union Budget of 2026-27 has seen a record allocation of over 6,800 crore for the development of northeastern region. Further, the historic tripartite agreements between the central government and the Nagaland government and the Eastern Nagaland People's Organization will address long-standing issues in the Eastern Nagaland and will bring a positive impact on the overall development of Nagaland.
सिविल सेवा परीक्षा सीएससी 2025 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सुबे दूसरा और आकाश ढुल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 25 मई 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 9,30,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सफल उम्मीदवारों को उनके समर्पण, मेहनत और लगन ने ये उपलब्धि दिलाई है। प्रधानमंत्री ने नए सफर में राष्ट्र की सेवा और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सभी नीतिगत उपाय और निर्यात प्रोत्साहन मिशन का उपयोग करेगी। नई दिल्ली में उन्होंने अमेरिका, इसराइल और ईरान संघर्ष के कारण व्यापार में आई बाधाओं के बारे में बताया। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने इन मुद्दों पर दैनिक आधार पर विचार करने के लिए अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया है। उन्होंने कहा कि भारत वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी खरीदारों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करना जारी रखेगा।
हर दिन अंतर मंत्रालय समूह निर्यातकों से बात करता है और सरकार निर्यातकों को हर तरह से मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार सभी नीतिगत उपाय और निर्यात प्रोत्साहन मिशन से निर्यातकों का समर्थन करेगी। वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों के मुद्दे पर जहाजरानी मंत्रालय और सभी जहाजरानी कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संयुक्त सेना और ईरान के बीच संघर्ष का आज सातवां दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इंकार किया और उसके बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को विनाश के कगार से वापस लेने और उसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा है कि कुछ देशों ने संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है और उसे राष्ट्र की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा कि वर्तमान स्थिति के लिए अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस बीच इसराइल ने ईरान और लेबनान की राजधानियों पर बमबारी की, जबकि अमेरिका ने कथित तौर पर समुद्र में एक ईरानी ड्रोन वाहक पर हमला किया। इस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में पहले ही भारी उछाल आ चुका है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी दी है कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। उन्होंने खाड़ी देशों के ऊर्जा निर्यात में व्यापक रुकावट की भविष्यवाणी की है। इससे तेल की कीमत 150 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल तक गिर सकती है। नेपाल के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है। झापा 5 से चुनाव लड़ रहे नेपाल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह 11,945 मतों से आगे चल रहे हैं। शाम तक रबी लामी छा ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 102 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही थी। गगन थापा की नेपाली कांग्रेस 11 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे है। केपी शर्मा ओली की यूएमएल 9 सीटों पर आगे चल रही है। पुरुष कमल दहल की पार्टी एनसीपी 10 सीटों पर आगे है, जहां दहल खुद पूर्व से 8,747 वोटों से आगे चल रहे हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत 165 सीटों के अंतिम परिणाम आज सार्वजनिक होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने माल्टा के विदेश मंत्री इयान बोर्ग और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रितेश रामफुल से मुलाकात की। उन्होंने भूटान के विदेश मंत्री लियोपोल्ड जीएम धुंगेल और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरत से भी मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने केन्या के विदेश मंत्री मुसिया डब्ल्यू मुदावादी और सेशल्स के विदेश मंत्री बैरी फौरे से भी मुलाकात की। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में अपनी तरह का पहला एकीकृत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। श्री सिंह ने कवरत्ती द्वीप पर भारत के पहले महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण ओटीईसी संचालित विलवीकरण संयंत्र की प्रगति समीक्षा के बाद ये बातें कहीं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह पायलट परियोजना प्रतिदिन लगभग 1,00,000 लीटर पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, साथ ही 60 किलोवाट बिजली का उत्पादन भी करेगी।
पहली बार दुनिया का हम इंटेग्रेटेड प्लांट यहाँ लगा रहे हैं, जिसका नाम है ओटेक, यानी एक पाइप है जिसके जरिए ठंडा पानी 1,000 मीटर गहराई से समुद्र से लाया जाएगा और दूसरी पाइप के माध्यम से जो उसके सतह का पानी है, तो गर्म पानी और ठंडा पानी एक साथ ला करके इस प्लांट में मिलाए जाएंगे। तो एक ही प्लांट में बिजली का भी उत्पादन होगा और पीने वाले पानी। दुनिया का ये सबसे पहला प्रयोग है और ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है।
भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा रैलियों का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी नेताओं ने राज्य के विभिन्न जगहों पर यात्राओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से रैली का शुभारंभ किया। बर्मिंगम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से होगा। प्रतियोगिता में अब सिर्फ लक्ष्य सेन की ही भारतीय चुनौती बची है। उधर महिलाओं के पर्थ क्रिकेट टेस्ट मैच श्रृंखला के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 198 रन बनाए। जेमिमा रॉड्रिक्स ने सबसे अधिक 52 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 35 रन की पारी खेली। दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 3 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया टीम अब भी 102 रन पीछे है। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम और उसके परिणाम स्वरूप लागू हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के चलते भारतीय घरेलू एयरलाइन द्वारा आज संचालित होने वाले कुल 278 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि कई क्षेत्रों में उड़ान संचालन प्रभावित हुई है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में सूचना दी कि इस अवधि के दौरान यात्रियों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सातों दिन कार्यरत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अनिश्चितता के दौर में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता है। पश्चिमी एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कुछ देशों ने जारी संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतगणना जारी है। बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान प्राप्त किया। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना चीन के ली शी फेंग से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।